नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया की राजधानी विंडहुक पहुंचे। वे शाम को राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदेतवा के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वैश्विक आतंकवाद निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने कहा, पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे गए थे। गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिरने से 9 लोगों की मौत और कई घायल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से और सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से होगा। और पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में भारत ने आयरलैंड को 6-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया की राजधानी विंडहुक पहुंचे। वे नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेतुम्बो नंदी नदेतवा के निमंत्रण पर वहां गए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा है और लगभग 3 दशक के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की नामीबिया की तीसरी यात्रा है। विंडहुक के होसियो कुताको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका रस्मी स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और नामीबिया के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे स्टेट हाउस में होगी। ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉ. सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के सम्मान में नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नामीबिया के संसद में भाषण देंगे। और जानकारी के लिए बात करते हैं नामीबिया में मौजूद हमारी संवाददाता अपर्णा खुंड से।
जी, यह यात्रा निश्चित रूप से भारत और नामीबिया के
जी अपर्णा, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा?
जी, यह यात्रा निश्चित रूप से भारत और नामीबिया के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी और बिल्कुल ही सही समय पर यात्रा हो रही है। अगर हम दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वर्तमान में जो है $600 मिलियन का व्यापार है और जो भारत का निवेश है नामीबिया में वो $800 मिलियन के करीब है, लेकिन ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है, इसलिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। भारतीय सार्वजनिक कंपनियां और निजी कंपनियां भी खनन, तेल और नवीनीकरण ऊर्जा, दवा निर्माण के संयुक्त उद्यमों में संभावनाएं तलाश रही है, इसलिए निश्चित रूप से ये यात्रा व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो नए क्षेत्रों को खोल सकती है और जिससे भारत की उपस्थिति जो है नामीबिया में वो और भी मजबूत होगी।
जी अपर्णा, अगर बात करें कि जो भारत की ग्लोबल साउथ नीति है और विशेष रूप से अफ्रीका के संदर्भ में अगर देखें तो ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
जी हाँ, अब भारत ने पिछले वर्षों में वैश्विक दक्षिण में खुद को एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है और अलग अलग वैश्विक मंच पर भारत ने हमेशा से ही दक्षिणी देशों की चिंताओं को लेकर आवाज उठाई है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीका संघ के G20 में प्रवेश की भी भारत ने वकालत की थी। तो हाँ, प्रधानमंत्री की जो ये नामीबिया यात्रा है ये विकासशील देशों के उत्थान के लिए और उनके साथ जुड़ाव के लिए, विशेष रूप से अफ्रीकन देशों की अगर हम बात करें तो उनमें क्षमता निर्माण और डिजिटल एवं स्वास्थ्य सुविधा के विकास के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है उसको और मजबूत करेगी। इस यात्रा में UPI को अपनाने से लेकर जनऔषधि योजना जैसे स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग और कौशल्य विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिससे भारत को अफ्रीका में एक अच्छी विकास साझेदारी बनाने में मदद होगी और नामीबिया जैसे संसाधन संपन्न देश से भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।
धन्यवाद अपर्णा इस जानकारी के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नामीबिया एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय अफ्रीकी साझेदार है जिसके साथ भारत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान राष्ट्रपति नंदी नदेतवा के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकवादी हमलों के।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ बातचीत की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने कहा है कि भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकवादी हमलों के सिलसिले में यह बात सामने आई। FATF ने आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों पर एक व्यापक रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन और क्राउड फंडिंग साइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने में हो रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के भारतीय सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर एक आत्मघाती बम विस्फोट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 40 सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय अधिकारियों की जांच में यह पता चला कि हमले की साजिश जैश ए मोहम्मद ने रची थी। जांच से यह भी पता चला कि भारत में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सीमा पार से लाए गए थे। हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा गया था। इस साल जून में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि यह हमला बिना वित्तीय मदद के नहीं हो सकता। वैश्विक निगरानी संस्था ने कहा कि पहलगाम हमला और हाल के अन्य हमले आतंकवादियों के समर्थकों के बीच धन के लेनदेन के बिना नहीं हो सकते। दीपेंद्र और आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
गुजरात के वडोदरा जिले में पादरा के पास आज सवेरे पुल ढहने की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आनंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाले गंभीरा पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे 5 वाहन महिसागर नदी में गिर गए। वडोदरा जिला प्रशासन सहित स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि स्थानीय लोग और तैराक भी बचाव अभियान में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि आनंद से 3 अग्निशमन दल तलाश और बचाव में सहायता के लिए नावों के साथ घटनास्थल पर गए हैं।
अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई है, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारी समितियों से जुड़ी महिलाओं और अन्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री शाह ने कच्छ जिले की ऊंट प्रजनक मालधारी सहकारी समिति की मीराल बेन रबारी से भी बातचीत की। श्री शाह ने आगे बताया कि गुजरात और राजस्थान सरकार मिलकर देशभर के ऊंट प्रजनकों से दूध एकत्र करने और उसके औषधीय गुणों का उपयोग करके अधिक कीमत प्राप्त करने की योजना बना रही हैं।
ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा।
पश्चिम बंगाल के कई मजदूर यूनियनों और श्रमिक महासंघों के समर्थकों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। समर्थक पिछले वर्ष केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को सौंपे गए 17 सूत्री मांग को लेकर धरना और जुलूस निकाल रहे हैं। इसमें बंद पड़े चाय बागानों और मिलों को खोलना, रोजगार, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, स्थायी पदों पर संविदा भर्ती बंद करना सहित कई मुद्दे शामिल हैं। कुछ जगहों से रेल सेवाओं के बाधित होने की खबरें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में आज राज्य में बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर राज्य में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान राजस्थान के चूरू जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। चूरू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से दो शव बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस साल फरवरी में अमरीका से निर्वासित अवैध प्रवासियों से जुड़े अवैध रास्तों के मामले में अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 11 स्थानों पर तलाशी ले रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि एजेंट विदेश जाने के इच्छुक निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाते थे। संयुक्त अरब अमीरात में पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण ने गोल्डन वीजा आवश्यकताओं को लेकर व्यापक भ्रम को दूर करने के लिए कदम उठाया है। कई भारतीय समाचार माध्यमों ने बताया था कि अनधिकृत कंसल्टेंसी कंपनियों के माध्यम से केवल 1,00,000 दिरहम का भुगतान करके वहां आजीवन निवास किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने गाजा में बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया है। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ब्रिटेन से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने बताया कि अगले दो दिनों तक मध्य भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों के लिए उत्तर भारत में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ जिलों में तेज वर्षा के कारण जल भराव हो गया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं तथा नदियां और नाले उफान पर हैं। नागपुर नगर निगम और जिला आपदा प्रबंधन बचाव कार्य में जुटे हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज कई क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। इटली के फ्लेवियो कोबोली का सामना 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक नोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में पोलैंड की ईगा स्वियातेक का मुकाबला रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा से और रूस की मीरा एंड्रीवा का सामना स्विट्जरलैंड की बेलिंदा बेंचिच से होगा। नीदरलैंड्स में भारत ए पुरुष हॉकी टीम ने आयरलैंड पर 6-1 से शानदार जीत के साथ अपने यूरोप दौरे की शुरुआत की। मुकाबले में आयरलैंड केवल एक गोल ही कर सका। प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार 9:30 से खेला जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के दवा आयात पर भारी शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बाद बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच आज भारतीय बाजारों में स्थिरता रही। सेंसेक्स सबसे कुछ देर पहले मामूली बढ़त के साथ 83,733 पर कारोबार कर रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक बढ़कर 25,532 पर कारोबार कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे। वे शाम को राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदित्वा के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वैश्विक आतंकवाद निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने कहा, पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे गए थे। गुजरात के वडोदरा में एक पुल गिरने से 9 लोगों की मौत और कई घायल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज शाम इटली की यानिक सिनर का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से और सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।